अरमान हॉस्पिटल पहुंच गया था। जैसे ही सबकी नज़र उस पर पड़ी, सबने मुंह फेर लिया। कोई भी अरमान की ओर नहीं देख रहा था। अरमान ने सबकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा। वो समझ गया था कि कोई भी अभी उससे बात नहीं करेगा। फिर भी अरमान सपाट चेहरे के साथ आस्था के वार्ड के सामने खड़ा हो गया, जहां वो एडमिट थी। उस वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और देव पांचों आस्था के वार्ड के सामने खड़े थे। उन्होंने अरमान से दूरी बना रखी थी। काफी दूर खड़े होकर लगातार इमरजेंसी वार्ड की ओर देख रहे थे, जहां आस्था का इलाज चल रहा था। डॉक्टर रश्मि, जो उस वक्त आस्था के साथ मौजूद थी, खुद को कंट्रोल करने के बाद आस्था को चेक करके बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र अरमान और पांचों पर पड़ी। डॉक्टर रश्मि ने भी एक पल के लिए अपनी आंखें झुका ली। चुप देखकर अरमान ने कहा, रश्मि कैसी है वो? अरमान ने इतना ही पूछा था कि पांचों तुरंत डॉक्टर रश्मि के पास आ गए। डॉक्टर रश्मि, भाभी कैसी है? आकाश चुप रहा। ध्रुव, आहान और देव ने डॉक्टर रश्मि से सवाल किए। उनकी आंखों में आस्था के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। डॉक्टर रश्मि को उन सबकी शक्ल देखकर बार बार रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, वो अभी, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अभी केवल 2.5 घंटे हुए हैं। अगले 3 घंटे आस्था के लिए और भी ज्यादा क्रिटिकल हैं। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आस्था को होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आस्था के साथ ऐसा कुछ होगा। अरमान के दिल में पहली बार कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। आस्था के कोमा में जा सकती है, ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी सबकी आवाज़ों के बीच एक और आवाज़ आई। क्या कहा? रश्मि, तुमने कहा आस्था कोमा में जा सकती है? ये आवाज़ सुनकर सब मुड़कर पीछे देखने लगे। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए दादाजी खड़े थे। दादाजी अस्पताल पहुंच गए थे और अस्पताल के बाहर अरमान, आकाश, ध्रुव आदि की कारें देखकर हैरान हो गए थे। वे सीधा इमरजेंसी फ्लोर पर आ गए थे और डॉक्टर रश्मि का ये बयान सुन लिया था। दादाजी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे और बोलने लगे, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ है आस्था बेटे को? वो तो केवल हाथ का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आई थी। क्या हुआ है डॉक्टर रश्मि? उसे बोलो, मुझे जवाब दो। दादाजी को इस तरह से रोते हुए देखकर ध्रुव और आहान, जो पहले से ही भावुक थे, दादाजी के गले लग गए। अरमान सपाट चेहरे के साथ उन लोगों को देख रहा था। सुमित, आकाश और देव दादाजी और ध्रुव को शांत करने की कोशिश करने लगे, हालांकि उनकी भी आंखें भरी हुई थीं। आकाश की आंखों में दादाजी ने आज तक आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज आकाश की आंखों में आंसू देखकर वे समझ गए थे कि मामला कितना सीरियस है। अरमान उन सबको बिल्कुल सपाट और भावहीन चेहरे के साथ देख रहा था, हालांकि उसके दिल के अंदर एक अलग ही तरह का तूफान मचा हुआ था। दादाजी ने तुरंत आकाश का हाथ पकड़ा और बोले, क्या हुआ है आकाश? जवाब दो, क्या हुआ है? आस्था तो सही सलामत यहां आई थी ना? फिर आकाश की ओर देखकर बोले, आकाश, तुझे तो मैंने उसका सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए और इलाज करने के लिए बोला था। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि मेरी आस्था बहू इस तरह से मौत के मुंह में चली गई? बोलो, जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? आकाश के मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। सबने अपना सर झुका लिया था। उन सबको सच पता था कि आस्था की ये हालत अरमान सिंघानिया की वजह से है, लेकिन वे ये सच दादाजी को नहीं बता सकते थे। दादाजी के झुके हुए सर देखकर वो सीधा अरमान के पास जाने लगे, लेकिन तुरंत डॉक्टर रश्मि बीच में आ गई। वो भी समझ चुकी थी कि आस्था की ये हालत अरमान ने ही की है। पहले उसे शक हुआ था कि आकाश ने किया है, लेकिन आकाश को आस्था के लिए परेशान होते देखकर और उसकी रिक्वेस्ट की वजह से वो समझ गई थी कि आकाश ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो समझ गई थी कि ये सब लोग दादाजी से छुपाना चाह रहे हैं कि आस्था पर अरमान ने हाथ उठाया था, उस सिचुएशन में जब वो खुद अपने होशो हवास में नहीं थी। दादाजी रश्मि को देखकर बोले, क्या हुआ रश्मि बेटा, बोलो ना, मेरी बहू को क्या हुआ है? बोलो ना बेटा प्लीज। आज तक आलोक सिंघानिया ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन आज उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ मेरे बच्चे को, मुझे बता दो क्या हुआ है? रश्मि बोली, दादाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। और जो कुछ भी हुआ है आस्था के शायद किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से हुआ है। आस्था को पैनिक अटैक आया था, इस वजह से वो सबकॉन्शियस हो गई, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, बस उसके लिए प्रार्थना कीजिए। रश्मि ने जानबूझकर आस्था के साथ मारपीट वाली बातें छुपा ली थी। वो ये बात दादाजी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कोई भी नहीं चाहता कि ये बात दादाजी को पता चले। आकाश ने रश्मि को छुपाते हुए देखकर मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। दादाजी तुरंत अरमान के सामने आ गए और उसका गिरेबान पकड़कर बोले, बता मुझे, सच बता, क्या किया है तूने उसके साथ? क्योंकि उसकी हालत ऐसे नहीं हो सकती है, जरूर तूने ही कुछ किया होगा। ये सुनकर सब हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगे। आकाश समझ गया था कि दादाजी से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। वो वहां आया और दादाजी के हाथ से अरमान का गिरेबान छुड़ाते हुए कहने लगा, दादाजी इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अरमान को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, गलती मेरी है। मुझे आस्था को अस्पताल लेकर आने से पहले अरमान को इन्फॉर्म करना था। आकाश ने सारी बातें दादाजी को बता दी। दादाजी पूरी तरह से हैरान हो गए और गिल्ट में डूब गए। दादाजी बिना अरमान से कुछ भी बात किए एक तरफ जाकर बैठ गए और बोलने लगे, ये मैंने क्या कर दिया, सारी गलती मेरी है। उस छोटी सी बच्ची की मैंने जबरदस्ती शादी करवा दी, मैंने उसे मजबूर किया, सिर्फ मेरी वजह से ये शादी हुई है। मैं उस वक्त बस सिंघानिया खानदान की इज्जत बचाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती इतनी बड़ी हो जाएगी कि उस बच्ची की जान पर बनाएगी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, सब मेरी वजह से, जबकि मुझे अच्छी तरह से अपने पोते अरमान सिंघानिया के नेचर के बारे में पता है कि उसे लड़कियों से कितनी नफरत है, उसकी जिंदगी में कभी प्यार आ ही नहीं सकता है। ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक उम्मीद से कि शायद ये लड़की उसके मन में प्यार जगा देगी, मैंने उसकी शादी अरमान से करवा दी। ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। वो बच्ची शादी के दिन कितना रो रही थी, कितना गिड़गिड़ा रही थी कि उसे ये शादी नहीं करनी। इतना ही नहीं, उसकी मामी और मामा ने उसे फिजिकल टॉर्चर भी किया था इस शादी करने के लिए, और कितनी मुश्किल से उससे हाँ करवाई थी हम सब ने। अरमान को दादाजी की बातें सुनकर हैरानी हुई। वो तो ये सोच रहा था कि अरमान को अरमान की जिंदगी में वीर रायचंद ने प्लान किया है, लेकिन अब दादाजी की बातें सुनने के बाद अरमान के दिमाग में शक के बादल छट गए थे। वो गहरे अफसोस में डूबता चला गया था। वो ऑलरेडी आस्था की जानकारी निकलवाने के लिए अपने आदमियों को लगा चुका था, जिनमें देव भी था, लेकिन अब दादाजी के मुंह से ये सुनने के बाद कि आस्था को शादी के लिए दादाजी ने ही प्रेशराइज किया था, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बिना रश्मिया किसी और को देखे तुरंत आस्था के वार्ड में घुस गया था। बाहर खड़े रहना मुश्किल हो चुका था, वो आस्था को देखना चाहता था। आस्था के वार्ड में घुसकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली। रश्मि ने ये देखकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर अरमान, प्लीज इस तरह से आप पेशेंट के पास नहीं जा सकते हैं, इट्स नॉट सेफ फॉर हर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरमान बाहर आ जाओ, पेशेंट के साथ इस वक्त तुम्हारा रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।